विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी
Ram 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 Ram
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama
Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare
Yeah.
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा
जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा
जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा
जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा
जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा
जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा
जय जगन्नाथ जय बलदेव
जगन्नाथ स्वामी पथ गामी नयन पथ गामी भवतु
जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी भवतु
जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी भवतु
जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी
जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा
जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा
जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय गौरनिताय 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 जय
राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद ओ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय बहुत जल्द बहुत सुंदर उत्सव करीब आ रहा है। आप सब जानते ही होंगे इस जगत के नाथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उत्सव पूरे देश विदेश में भक्तों के द्वारा मनाया जाता है। आने वाली 4 तारीख को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमारे श्री राधा गिरधारी मंदिर की ओर से मीरा रोड में है। तो आज भागवत कथा को विश्राम देकर जगन्नाथ जी के बारे में कुछ श्रवण करेंगे 15-20 मिनट और आधा पौना घंटा आज मैं आपको कुछ नई चीज बताने वाला हूं। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग दुखी होंगे। अब समय ही बताएगा क्या होने वाला है। तो आप सब जानते हो, जैसे हम राधा गिरधारी को प्रणाम करते हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले वैष्णव को प्रणाम करते हैं, वांछा कल्प तरुभ्यश्च इत्यादि। फिर प्रभुपाद जी के चरण में जाते हैं, नमो विष्णु पादाय मंत्र उच्चारण करते हैं। फिर जाते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पास, नमो महावदान्याय। फिर नरसिंहदेव भगवान के चरण में, श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा श्लोक बोलकर प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत करते वक्त हम हे कृष्ण करुणा सिंधु मंत्र का उच्चारण करते हैं। श्रीमती राधा रानी के लिए तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। और जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं तब क्या बोलते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं? जैसे राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नरसिंह देव भगवान ये सबके प्रणाम मंत्र है, वैसे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के भी प्रणाम मंत्र है। तो और तो वैसे तो हमारा और आपका संपर्क इतना नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती करूं, परंतु सबके चरणों में प्रार्थना है कि रथ यात्रा के पहले जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी का प्रणाम मंत्र बाय हार्ट कर लेना चाहिए। ताइए आज का प्रवचन प्रारंभ करते हैं इस श्लोक मंत्र के साथ। मेरे पीछे दोहराइए, पहले जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, फिर सुभद्रा जी का और फिर बलदेव जी का। देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे जय देवी भक्ति दात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। अब ये हुआ सुभद्रा जी का, इनके पहले जगन्नाथ जी का, अब बलदेव जी का। नमस्ते तुहल ग्राम नमस्ते मूषलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे जय देवी भक्ति दात्री प्रसिद्धं परमेश्वरी जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। नमस्ते तुहल ग्राम नमस्ते मूसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवमांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भगत वृंद। हरे कृष्णा आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्ष विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे प्रियो जगत्करो करुणावतारो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगं शिक्षात्मैकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा शरणं प्रपद्यते। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तापित प्रति सोमवार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान जगन्नाथ जो इस जगत के अर्थात अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है, नाथ का अर्थ आप सब लोग जानते होंगे, नाथ से ही एक शब्द बना है वो है नथनी। माताएं जो नाक में पहनती है उसे नथनी कहा जाता है। तो जो जगत के नाथ है वे नाथ इस संसार के सभी जीवों के नाक में माया रूपी रस्सी को डालकर इस संसार के सभी जीवों को मथते रहते हैं। जैसे बैलगाड़ी चलाने वाला बैल के नाक में रस्सी डालकर वह रस्सी अपने हाथ में रखता है और जैसे चाहे वैसे उस बैल को घुमाता है, वैसे ही भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा इस अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत अनंत जीवों को बांध कर रखे हैं और जब चाहे तब भगवान इस संसार के जीवों को खिलाते हैं और खिला रहे हैं। इसलिए कहते हैं एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। इस संसार में कंट्रोलर ईश्वर भगवान एक ही है, वो है कृष्ण। और कृष्ण के अलावा जितने भी जीव हैं ये सब भृत्य है। भृत्य का अर्थ होता है सेवक, नौकर, सर्वेंट। जितने भी जीव हैं सब भगवान के नौकर हैं, दास हैं। और भगवान इस संसार के जीवों को जैसे नचाना चाहते हैं इस संसार के लोग वैसे ही नाचते हैं। इसलिए कहते हैं जाहे एछे नाचाए ते तेछे करे नृत्य। भगवान जैसे जैसे नचाना चाहते हैं संसार के लोग नाचते हैं। तो भगवान के हाथ में हम सब की डोरी है, यदि उनकी कृपा हो तो इस डोरी के द्वारा हमको उनके धाम में भी बुला सकते हैं और यदि उनकी कृपा से हम विमुख हो जाएं, तो वह हमें नरक में भी भेज सकते हैं। सुख देने वाले भी वही हैं और इस संसार के दुख देने वाले भी वही हैं। इसलिए ऐसे तत्व को नाथ कहा जाता है, मालिक कहा जाता है। तो ऐसे जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिन कुछ दिन पहले गया, आप सब जानते होंगे स्नान यात्रा जगन्नाथ जी की। स्नान यात्रा का अर्थ होता है जगन्नाथ जी को उस दिन पहली बार स्नान करवाया गया था। कथा तो बहुत लंबी है और हमने बुधवार को यह कथा कर चुके हैं, बुधवार को आगे समय रहेगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जगन्नाथ जी का प्राकट्य राजा इंद्रधुम्न के द्वारा हुआ। इंद्रधुम्न राजा के अगाह प्रयास से जगन्नाथ जी आज जो जगन्नाथपुरी में विराजते हैं, उपस्थित हैं, वही जगन्नाथ जी राजा इंद्रधुम्न की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। और जिस दिन जगन्नाथ जी प्राप्त हुए, जिस दिन जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ, उस दिन ब्रह्मा जी के द्वारा अभिषेक किया गया। आज जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी है उसका सर्वप्रथम अभिषेक और आरती साक्षात ब्रह्मलोक से आए हुए ब्रह्मा जी ने किया। राजा इंद्रधुम्न इतने प्रतापशाली राजा थे कि वे अपने भजन के बल पर इस पृथ्वी से ब्रह्मलोक चले गए ब्रह्मा जी को इनविटेशन देने के लिए कि मैंने एक मंदिर बनाया है, आप आइए, सर्वप्रथम पूजा आप कीजिए। और इंद्रधुम्न महाराज के बुलावे से ब्रह्मा जी आए और स्नान की। और उसी परंपरा से आज भी उसी दिन भगवान जगन्नाथ जी को स्नान करवाया जाता है। बहुत बहुत कुंड के जलों से, सरोवर के जलों से, गंगा जल इत्यादि से जगन्नाथ जी को बहुत बहुत स्नान करवाया जाता है। इसलिए हमारे गौड़ीय भक्त की मान्यता है, क्योंकि उस दिन जगन्नाथ जी को भक्त लोग बहुत स्नान करवाते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी को सर्दी हो जाती है, जगन्नाथ जी को बीमारी लग जाती है। वैसे तो भगवान का देह हमारी तरफ पंच महाभूत का नहीं है, हमारा जो ये शरीर है ये शरीर अविद्या जाल है, अविद्या का जाल है। भगवान का देह तो सच्चिदानंदमय विग्रह है, सत चित आनंद ही उसमें भरा है। जड़ मैटर भगवान का शरीर नहीं है। भगवान के शरीर में कभी फोड़ा फुंसी या बीमारी या सर्दी कभी नहीं हो सकती, लेकिन भक्तों का भाव है ऐसा कि भगवान को सर्दी, भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए 15 दिन के लिए भगवान को आराम देना है। इसलिए 15 दिन तक भक्त लोग जगन्नाथ जी का दर्शन भी बंद रखते हैं। अब आज गोड़िया या इस्कॉन के सभी सेंटरों में जाओगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन आपको नहीं मिलेगा। स्नान यात्रा से लेकर जगन्नाथ रथ यात्रा तक 15 दिन तक जगन्नाथ जी का दर्शन कोई नहीं कर सकता। जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर सकता है, इसलिए इस 15 दिन को अनावसर कहा जाता है। अन अवसर, अवसर का अर्थ होता है उत्सव। भगवान का दर्शन ही एक उत्सव है, परंतु जब दर्शन नहीं होता है तो उसे अनावसर कहते हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का दर्शन बंद रखते हैं। और भक्तों का दूसरा भी एक भाव है, क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है और मूल रथ यात्रा जो जगन्नाथपुरी में होती है, कुछ लोग गए होंगे तो पता होगा, जगन्नाथ जी के मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा होती है, बीच में कुछ 5-6 किलोमीटर का गैप है। तो जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर को वृंदावन मानते हैं और अपने मंदिर को द्वारका मानते हैं। तो जगन्नाथ जी का भाव है कि मुझे द्वारका से वृंदावन जाना है, और जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी के साथ उपस्थित है। तो लक्ष्मी जी को छोड़कर 15 दिन लक्ष्मी जी को छोड़कर बाहर रहना है, क्योंकि यहां पर हम जब रथ यात्रा करते हैं तो 1 दिन की होती है, परंतु जगन्नाथपुरी में आज भी आप रथ यात्रा देखोगे तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं। तो जगन्नाथ जी अपनी भारिया लक्ष्मी को छोड़कर राधा रानी के साथ 10 दिन रहना चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी क्रोधित न हो जाए इसलिए उसे मनाने के लिए 15 दिन लोगों की झंझट मारी से मुक्ति ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, किसी को दर्शन देना बंद कर देते हैं, केवल लक्ष्मी जी के साथ स्पेशल टाइम लेते हैं। आजकल स्त्रियों का माताओं का बहुत कंप्लेंट है कि हमारे प्रभु जी हमें टाइम ही नहीं देते हैं, और भक्ति में आने के बाद तो जरा भी टाइम नहीं देते हैं। तो डरिए मत, प्रभु जी को डरना नहीं चाहिए, ये भगवान से ये परंपरा चली आई है। जिस भगवान की हम भक्ति करते हैं उसे भी ये प्रॉब्लम है, तो हमें तो होगा ही, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, तो संसार में चलता रहेगा, भजन करना नहीं छोड़ना है। तो फिर भी भगवान ने लक्ष्मी जी के लिए 15 दिन की छुट्टी ली, 15 दिन तक लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा में भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर जब 15 दिन के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन खुलता है तो उस दर्शन को भी नेत्र उत्सव कहा जाता है। तो ऐसे बहुत बहुत उत्सव, बहुत फेस्टिवल जगन्नाथ जी के साथ जुड़े हुए हैं। जगन्नाथ जी के साथ बहुत बहुत कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। असंख्य जगन्नाथ जी की लीला है और आज भी हो रही है, आज की तारीख में भी जगन्नाथ जी लीला करते हैं। तो बहुत बहुत लीलाएं हैं, लेकिन एक लीला का मैं आपको श्रवण करा दूं कि एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, और वे इतनी भक्ति करने लगे कि अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर, भिक्षा मांगने के कार्य को छोड़कर केवल भगवान का भजन करते रहे। प्रतिदिन का यही कार्य था, सुबह भगवान के नाम का जप करना, पूरा दिन भगवत गीता का पाठ करना और शाम को भगवान के नाम का कीर्तन करके फिर दूसरे दिन सुबह से यही कार्य शुरू। इस प्रकार से अपना जीवन बिता रहे थे तो धीरे धीरे करके उनके पास जितना भी धन था ये सब समाप्त हो गए। रे तो होना ही है। धन समाप्त हो गया और बहुत गरीब हो गए, इतने गरीब के खाने के भी वांधे पड़ गए, खाने के लिए भी घर पे कुछ नहीं बचा। सोच लगे अब क्या करें। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी भी उनके साथ रहती थी, जिनका नाम था विमला देवी, और उनके तीन संतान थे। पांच जन एक घर पे रह रहे थे, बिना कमाई के कितने दिन तक टिकेंगे। जब बहुत बहुत भूखमरी के कारण वे दुखी होने लगे, तब ब्राह्मण ने सोचा कि अब जगन्नाथपुरी हम चले जाते हैं, भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में आश्रय लेंगे, जरूर भगवान कुछ कृपा करेंगे। तो ब्राह्मण और उनकी पत्नी विमला देवी और तीनों बच्चे जगन्नाथपुरी में आकर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। बहुत बहुत कितने दिनों से बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, विमला देवी ने कुछ नहीं खाया था, ब्राह्मण ने कुछ नहीं खाया था, लेकिन ब्राह्मण के भक्ति में थोड़ी भी रुकावट नहीं थी। जितना जितना दुख बढ़ रहा है उतनी भक्ति बढ़ रही है। संसार में देखा गया है कि मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है, परंतु जीवन में कुछ रुकावट आई, कुछ धन की कमी हो गई या कुछ दुख आ गया तो भक्ति बंद कर देते हैं। परंतु भक्त का स्वभाव होता है कि दुख जितने बढ़ते हैं भक्ति उतनी बढ़ती है। इसलिए महारानी कुंती ने मांगा है, कृष्ण देना है तो मुझे दुख दो, सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए, क्योंकि दुख जैसी स्थिति में ही आपकी याद आती है, सुख के समय में तो आप भूल जाते हैं। तो ब्राह्मण की भक्ति निरंतर बढ़ती रही और भगवत गीता में अटूट विश्वास था कि यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो योग क्षेमो वहाम्यहम्, भगवान हमारा योग और क्षेम हमारा पालन पोषण करते हैं। जब विमला देवी कहती थी कि तुम कुछ कमाओ, घर पे ही बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो, ये बच्चे भूखे मर रहे हैं, तब ब्राह्मण इतना ही कहते थे कि देवी, देव मैं भगवान का भजन करता हूँ और जिस भगवान का मैं भजन करता हूँ उस जगन्नाथ जी का एक नाम है विश्वम्भर, और विश्वम्भर का अर्थ होता है विश्व, का अर्थ होता है जगत, और अम्भर का अर्थ होता है पोषण, भरण पोषण करने वाला। जिस भगवान का मैं भजन करता हूँ वह अनंत कोटि ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले हैं, तो क्या उसके उसकी भक्ति करने वाले का भरण पोषण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। गीता पढ़ो, गीता में भगवान ने साफ साफ लिखा है योग क्षेम वहां वहां यह मैं सब कुछ देता हूं। इस प्रकार से ब्राह्मण उत्तर देते, ब्राह्मणी रोज ब्राह्मण को डांटती, परंतु ब्राह्मण तो केवल भगवान की भक्ति में। जब 15-20 दिन से कुछ नहीं खाया, जब एक दिन ब्राह्मणी बहुत क्रोधित हुई और क्रोधित होकर ब्राह्मण के पास आई और कहने लगी कि अब तो कुछ करो, अब तो मर जाएंगे हम। ब्राह्मण ने कहा कि गीता पर और भगवान के पर विश्वास रखो। तब वो विमला ने कहा कि गीता 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 क्या पूरा दिन गीता गीता करते रहते हो। ब्राह्मण के हाथ से वो गीता ले ली और गीता को लेकर उसके ऊपर एक पेन लेकर उस गीता के जो श्लोक है ब्राह्मण दिखा रहे थे उस पेज के ऊपर जोर से लाइन खींच दी, दूसरा पेज निकाला जोर से लाइन खींच ली, और तीसरे पेज के ऊपर जोर से लाइन खींचकर वो बुक को फेंक दिया। कुछ नहीं ये गीता में रखा है, ये गीता बिल्कुल गलत है, इस प्रकार से ब्राह्मण ने कह दी। परंतु ब्राह्मण ने हृदय से भगवान को प्रार्थना की, प्रभु प्रभु ये मेरी पत्नी अज्ञान में है, कुछ नहीं जानती है, कृपया करके आप इसे क्षमा कर देना, भले वो आपके प्रभाव को नहीं जानती है परंतु मैं तो आपके प्रभाव को जानता हूं। इस प्रकार से ब्राह्मण की प्रार्थना और पत्नी का बहुत रूठना, और जब ब्राह्मण की पूरी पूरी परीक्षा भगवान ने ले ली। वास्तव में हमारे जीवन में भी ऐसी घटना बनती है, और जिसके जीवन में नहीं बनी है उसके जीवन में बनेगी, तो यह घटना भगवान के द्वारा ही आती है और भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं। यदि हम इस परीक्षा में पास हो गए तो ठीक है, परंतु यदि हम भक्ति करना छोड़ दिए तो फिर हमारा कुछ नहीं होगा। देखिए ब्राह्मण फिर भी भक्ति में अड़ग रहा और भगवान ने देखा कि बस इस ब्राह्मण को मैंने बहुत दुख दे दिया, बहुत परीक्षा हो गई, भगवान इस ब्राह्मण के ऊपर रीझ गए और ब्राह्मण अफसोस करते करते कि मेरी पत्नी ने बहुत अपराध किया है भगवान का, अफसोस करते करते ब्राह्मण को नींद आ गई। उसी वक्त शाम को 4-5 बजे एक छोटा सा बालक उस ब्राह्मण के घर पर आया और दरवाजे को खड़खड़ाया। ब्राह्मण तो सो रहे थे, परंतु ब्राह्मण की पत्नी विमला ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर देखा तो बहुत सुंदर लड़का, छोटा सा लड़का, सांवला स्वरूप था, ब्राह्मण के रूप में आया और कहा कि हे माते, आपके लिए मैं बहुत सामान लाया हूं। न जाने इस सामान में बहुत बहुत चीज, खाने पीने की, गहने, सोने, रुपये, धन, बहुत कुछ ये चीज है। ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे लिए लाए हो? अच्छा, हमारे लिए क्यों लाए हो? तब उस बालक ने कहा कि ये मैं नहीं लाया हूं, एक जगबंधु नाम के एक व्यक्ति है, जगबंधु नाम के व्यक्ति ने यह सामान आपके लिए भेजा है, मैं तो पहुंचाने के लिए आया हूं। ब्राह्मण ने कहा कि जगबंधु ये कौन है? तो उस लड़के ने कहा कि आप नहीं जानते हो, परंतु आपके पति जानते हैं जगबंधु कौन है। जगबंधु अर्थात जगत के बंधु अर्थात स्वामी, जगत के स्वामी वो जगन्नाथ थे और कोई नहीं थे, परंतु इन्होंने कहा जगबंधु ने ये सब भेजा है। अच्छा तो ठीक है, लाइए लाइए, अंदर रख दो। ब्राह्मणी तो इसी ताक में थी कि ऐसा कुछ मिल जाए, तो सब कुछ अंदर लाया। परंतु ब्राह्मण ने जब से उस लड़के को देखा, बहुत सुंदर स्वरूप, सांवले स्वरूप को, ब्राह्मणी उस पर मोहित हो गई, वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा, कहा कि तुम्हें तो पसीना निकल रहा है, तुम थक गए होंगे, तुम पानी पियो। और जब पानी दिया तो उसके बाद ब्राह्मणी ने ये जो सामान लेकर आए थे उसमें से ही कुछ फ्रूट निकाला और उसको काट कर इस बालक को दिया कि बेटा ये आप थोड़ा फ्रूट खा लो, फल खा लो। तब उस बालक ने कहा कि माते, मेरी खाने की तो बहुत इच्छा है, परंतु क्या करूं, मैं खा नहीं सकता हूं। ब्राह्मणी ने कहा क्यों आप नहीं खा सकते हो? तो बालक ने कहा कि मेरी जीवा पर बहुत चोट आ गई है, जख्म आ गया है। अच्छा, कैसा जख्म आ गया है? तो उस बालक ने अपना मुंह खोलकर अपनी जीवा दिखाई तो उस बालक की जीवा के ऊपर जैसे चक्कू से कोई जीवा को 3 रेखा से काट दे, वैसे जीवा में 3 रेखा थी। ब्राह्मणी का हृदय कांप गया और कहने लगी, बालक पुत्र, तुम्हारे जीवा पर ऐसा जख्म किसने दिया? तो बालक ने कहा कि आप नहीं जानती हो? ब्राह्मण ने कहा नहीं, मैं नहीं जानती हूं। बालक ने कहा भले आप नहीं जानते हो, परंतु आपके पति जानते हैं कि ये जख्म किसने दिया है, आपके पति को ही पूछ लेना, जब वो नींद से उठेंगे तो आप उसे पूछ लेना। ऐसा कह के वो बालक ने कहा कि मुझे बहुत देरी हो रही है, तो बालक वहां से भाग गया, बहुत कुछ धन सोना गहना रखकर भाग गया। ब्राह्मण उठे सुबह उठते ही ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा कि पतिदेव, आपने कभी बताया नहीं कि आपके जगबंधु नाम के भी मित्र कोई है? ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा कोई मित्र तो मेरा नहीं है। नहीं नहीं, कल जगबंधु नाम के आपके मित्र ने हमारे लिए बहुत बहुत सामान भेजा है। अच्छा, तो उन्होंने कुछ अपनी पहचान कुछ बताई? नहीं, उन्होंने कुछ पहचान नहीं बताई, वह नहीं आए थे, परंतु उसने किसी बालक को भेजा था। और हाँ, वो तो मैं आपको कहने को भूल ही गई, उस बालक की जीवा पर 3 खरोच थी, 3 निशान थे, कुछ लकीर जैसे। उसने कहा कि मेरे पतिदेव जानते अर्थात आप जानते हो कि ये जीवा पर ये 3 निशान क्यों आए हैं, तो आप जानते हो उस बालक के जीवा पर इतनी 3 घाव क्यों आए? तब ब्राह्मण ने कहा कि देवी वो और कोई नहीं, वे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ जगन्नाथ जी तुम्हें दर्शन देकर चले गए। देवी क्या बताऊं, तुमसे कितना बड़ा अपराध हो गया है, जो लकीर से तुमने भगवत गीता के ऊपर 3 लकीर खींची थी, वास्तव में वो भगवत गीता के साधारण पत्ते नहीं है, वे भगवान की वाणी है। तुमने भगवत गीता के पन्ने के ऊपर क्या लकीर खींची? तुमने भगवान की वाणी भगवान की जीवा पर ही लकीर खींच दी। तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो चुका है। इस प्रकार से आगे भी बहुत कथा है, परंतु इतना ही समझिए, भगवान जगन्नाथ सबकी रक्षा करते हैं, जगत के नाथ हैं। परंतु भक्त के जीवन में भी कभी ऐसे दुख के समय आते हैं, परंतु ये बहुत कम समय के लिए होते हैं, केवल परीक्षा भगवान लेते हैं। फिर तो भगवान जगन्नाथ है, जगत के नाथ है। इस संसार में हम देखिए, इस संसार का कोई सुखी धनी व्यक्ति हो तो उसके चरणों में हम गिर जाते हैं, कुछ कमाने के लिए दीजिए। परंतु वास्तव में भगवान के चरण में गिरना चाहिए, क्योंकि वे तो संसार के, एक संसार के नहीं है तो अनंत संसार, अनंत जगत के नाथ। तो ऐसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है, और भी बहुत सारी कथा है। अगले सोमवार को हम यह कथा करेंगे।